हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 468 अनय मनस्वी का घर। आदित्य के होटल से निकलते ही वो दोनों भी अपने घर वापस आ गए और पूरे रास्ते मनस्वी अपने मोबाइल पर लगी रही, जबकि अनय शिकायती नज़रों से उसे घूरकर देख रहा था, लेकिन कार में ड्राइवर के सामने उसने कुछ भी नहीं बोला। मनस्वी भी उसकी निगाहें खुद पर महसूस कर पा रही है, इसलिए एक बार भी उसने अनय की तरफ देखते हुए उससे नज़रें नहीं मिलाई। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर आए, अनय एकदम ही मनस्वी के सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें पता था इस बारे में कि विराज की मॉम और आदित्य का क्या रिश्ता है, लेकिन फिर भी तुमने आज तक मुझे इस बारे में कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, मुझे क्यों भला कुछ भी बताओगी तुम, मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ ही कौन, एक ऐसा आदमी जिस पर शादी करके भी तुमने उस पर एहसान किया और उसके साथ। अनय गुस्से में मनस्वी से सवाल करता हुआ ये बात बोल ही रहा था, तभी मनस्वी ने एकदम से मुड़कर उसकी तरफ देखा और वो उससे की तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, शट अप, जस्ट शट अप अनय, स्टॉप ऑल योर नॉनसेंस, जब देखो तब तुम एक बात ही बोलने लगते हो, क्या तुम इतनी इतनी सी बात को लेकर हमेशा ही इस तरह से इनसिक्योर रहोगे? मनस्वी जल्दी उससे कभी भी चिल्लाकर बात नहीं करती है, चाहे वो जितने भी ज्यादा गुस्से में हो, वो हमेशा ही अपना गुस्सा अलग तरह से दिखती है या फिर वो जल्दी उससे नाराज होती ही नहीं है। इसलिए जब अभी मनस्वी ने इस तरह से चिल्लाया तो अनय एकदम ही चुप हो गया और हैरानी से उसकी तरफ ही देखने लगा। आई थिंक हमारा रिलेशन सबसे बड़ा फेलियर है और हमारा प्यार भी, जब मैं तुम्हें सिक्योर ही फील नहीं करवा सकती तो क्या मतलब बनता है हमारे इस रिलेशन का? तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैं भी जानबूझकर तुमसे सारी बातें छुपाती हूँ और कभी तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, है ना? सही कहा ना मैंने? बोलो, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये बात बोलते हुए मनस्वी बहुत ही ज्यादा रोने लगी और रोते रोते वो वहां जमीन पर ही बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अनय से सवाल जरूर कर रही है, लेकिन उन सवालों के जवाब शायद सुनने के लिए वो खुद भी तैयार नहीं है। अनय ने उसे इस तरह से रोते देखा तो उसे बहुत ही बुरा लगा और उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत ही उसके सामने जमीन पर ही घुटने के बल बैठ गया और अनय ने उसके कंधे से पकड़कर उसे खींचकर अपने गले लगा लिया। मनस्वी ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, ना ही उसने अनय को गले लगाया और ना ही खुद से दूर किया, बस उसी तरह से उसके गले लगाकर रोती रही। उसने अपना हाथ भी अनय की पीठ पर नहीं रखा। मनस्वी के इस तरह से रोने पर अनय को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उसने मनस्वी को अपने एकदम करीब खींचकर उसकी आंखों में देखा और उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, स्टॉप क्राइंग मनस्वी, इतना क्यों रो रही हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी और आई एम सॉरी, मुझे पता है शायद मैं ओवर रिएक्ट कर देता हूँ कभी कभी, बट तुम मेरी तरफ से भी तो कभी समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं बताती हो तुम मुझे कुछ भी? तुम्हें पता है मैं कुछ जानने के लिए कितना परेशान था उस दिन से जब वो सब लोग यहाँ पर थे? अनय ने अपनी सफाई में ये बोलना शुरू किया तो मनस्वी का रोना कुछ कम हुआ और रुककर उसने कन्फ्यूजन से अनय की तरफ देखते हुए कहा, किस दिन से, कब की बात कर रहे हो तुम? और मैं तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था और कभी लगा नहीं ये इतना इम्पॉर्टेंट है और हम दोनों की इस बारे में कोई बात नहीं हुई। ऐसा नहीं है मैं इंटेंशनली तुमसे ये सब कुछ छिपाना चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा ही ऐसा रिएक्ट करते हो और मुझे हर्ट करते हो पिछली बातें बोलकर। मनस्वी ने आंसू भरी नजरों के साथ नजर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए अनय अपने हाथों से उसकी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछने लगा। ओके सॉरी, सॉरी बाबा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे भी लगता है शायद कभी कभी मैं ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ, लेकिन उस दिन जब विराज यहाँ पर था, उसके मम्मी पापा बहन और आदित्य भी यहाँ पर आया था उसे वापस ले जाने के लिए, तब उसकी मम्मी ने आदित्य को जिस तरह से देखा था मुझे तभी शक हो गया था और तब से मैंने इस बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं चल पाई जो तुमने आज बोला और आदित्य भी इस बात पर पूरा मना नहीं कर पाया, इसका मतलब ये बात सच है। अपने आंसू रोक कर बोलने की कोशिश करते हुए मनस्वी ने कहा, हाँ बिल्कुल सच है, और क्या, झूठ बोलूंगी या फिर मजाक करूंगी मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ? जानते हो हमारा कोई ऐसा देवर भादी वाला रिश्ता नहीं है जो मैं इस तरह की बात बोलेगी, ये बात सच है। और तुम इस बारे में क्यों पता कर रहे थे? और अगर कर भी रहे थे तुमने भी तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं तो नाराज नहीं होती और ना ही ऐसे ओवररिएक्ट करती हूँ इतनी सी बात पर, लेकिन तुम हमेशा ऐसा करते हो, जाओ मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी। इतना बोलते हुए मनस्वी ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए पीछे पुश किया और खुद एकदम से उठकर खड़ी हो गई और वहां से सीढ़ियों की तरफ ही जाने लगी, तभी पीछे से अनय बोल पड़ा, अच्छा मुझे नहीं बात करोगी तो फिर क्या अपने बॉडीगार्ड से बात करोगी? वो तो वैसे भी मरा जा रहा था तुमसे बात करने के लिए, नोटिस किया था मैंने। मनस्वी का चेहरा दूसरी तरफ था और अनय के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आया और वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए उसे गुस्से में उल्टा सीधा कुछ सुनने वाली थी, लेकिन तभी उसे कुछ और सूझा। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद की और बोली, चलो अच्छी बात है, कम से कम कोई तो इंटरेस्टेड है मुझमें, नहीं तो हमेशा मुझे ही किसी के पीछे जाकर अपनी इंसल्ट करवानी पड़ती है। इतना बोलते हुए मनस्वी ने एक गहरी सांस भरी और तुरंत ही वहां से आगे बढ़ गई। अनय वहीं अपनी जगह पर खड़ा हुआ उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगा, जैसे ही उसे समझ में आया कि वो इनडायरेक्ट उसे ही ताना मारते हुए वहां से गई है। वैसे ही वो तुरंत भागकर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे की तरफ पहुंचा और जैसे ही वो वहां कमरे तक पहुंचा, उसे देखकर मनस्वी ने तुरंत ही उसके मुंह पर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर अंदर से लॉक भी। इस तरह से मुंह पर दरवाजा बंद होते देख अनय दोनों हाथों से दरवाजा पीटते हुए बोला, ये क्या बचपना है ये मनस्वी, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है यार। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का, मैं कब तुम्हारी इंसल्ट करता हूँ, मैं बस। उसकी आवाज सुनकर मनस्वी भी दरवाजे से पीठ लगाकर वहीं दरवाजे के पास ही बैठ गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं खोलना दरवाजा, ने जाओ यहां से, थक गई हूं मैं हर बात को एक्सप्लेन कर करके, तुम क्यों कभी खुद से मुझे समझ नहीं सकते जैसे मैं तुम्हें समझती हूं। आंखें कसकर बंद करने की वजह से उसकी आंखों में भरे हुए आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क रहे हैं और उसकी ये बात सुनकर अनय को भी कहीं न कहीं अपनी गलती एहसास हुई और उसने धीरे से फिर दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो समझ गया अभी मनस्वी दरवाजा नहीं खोलने वाली, इसलिए वो भी दरवाजे के दूसरी तरफ बैठ गया और उसके दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। अच्छा तर आदित्य का बंगला। सुनैना उस रूम से बाहर निकली और उसने चुपचाप उस रूम को इस तरह से लॉक कर दिया जैसे कि वो पहले था और वहां पर उसने जो कुछ भी देखा था वो सारी चीज देखने के बाद वो मन में बहुत सारे सवाल और चेहरे पर कन्फ्यूजन भरे एक्सप्रेशन लिए वहां से वापस नीचे आ गई और अब वो थोड़ी सी खोई हुई सी लग रही है क्योंकि नैना, स्वीटी, अक्षत आपस में बातें कर रहे हैं लेकिन वो कुछ सोचती हुई सी वहां पर बैठी है। नैना को वहां पर आकर बैठते देख नैना ने उससे पूछा, सोनू डिनर रेडी है और वैसे आदित्य कितनी देर में आएगा, बुला लो उसको भी, साथ ही डिनर करेंगे।
नैना ने ये बात उसकी तरफ देखते हुए बोली और सुनैना के कानों में कहीं ना कहीं ये बात पड़ी लेकिन वो अलग ही अपने सोच में डूबी हुई थी इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही नैना को कोई जवाब दिया। सुनैना से इस तरह कोई भी रिस्पांस ना मिलने पर अक्षत और नैना, स्वीटी तीनों एक दूसरे की तरफ ही देखने लगे और स्वीटी सुनैना के एकदम नज़दीक बैठी थी तो उसने सुनैना के कंधे पर टच करते हुए कहा, भाभी क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो, कब तक आएंगे भाई, आपकी बात हुई या नहीं उनसे कॉल पर, काफ़ी टाइम हो गया है, 4 से 5 घंटे। सुनैना स्वीटी के इस तरह से टच करने पर सुनैना एकदम ही चौंकते हुए बोली, हाँ वो आधी कहाँ है, आ गया क्या। इतना बोलते हुए वो अपना सिर घुमाकर इधर उधर देखने लगी क्योंकि उसने सुनैना के मुंह से बस भैया सुना और इसके आगे पीछे की कोई भी बात पर वो ध्यान नहीं दे पाई। अरे कहाँ आ गए भैया, अभी हम तो खुद आपसे पूछ रहे हैं लेकिन आप हो कि पता नहीं क्या सोच रही हो, भैया के ख्यालों में ही डूबी होगी है ना भाभी। इतना बोलकर स्वीटी हंसने लगी। सुनैना को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई क्योंकि वो उन लोगों की कोई बात पहले सुन ही नहीं रही थी और नैना भी हंसने लगी। उन सबको हंसते हुए देखा अक्षत भी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है बहुत हो गया हंसी मजाक, लेकिन ये तो पता करो आदित्य आखिर कहाँ रह गया। कहीं नहीं रह गया, मैं आ गया हूँ वापस, शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया लेकिन फिर भी। दरवाजे से अंदर आती ही आदित्य की आवाज़ उन सभी के कानों में पड़ी तो सभी ने मुड़कर उसी तरफ देखा लेकिन सुनैना एकदम अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ पड़ी लेकिन फिर कुछ सोचकर आदित्य से कुछ दूर पर ही रुक गई। आदित्य ने उसका ऐसा बर्ताव नोटिस तो किया लेकिन सबके सामने उसने कुछ बोला नहीं और जब तक वो खुद ही आगे आ गया और फिर उन सभी ने साथ में डिनर किया और अक्षत नैना वहां से चले गए और स्वीटी भी डिनर के बाद गेस्ट रूम में चली गई अपना लैपटॉप लेकर क्योंकि उसे अपने इवेंट की तैयारी करनी थी जो कि उसकी इंस्टीट्यूट का फाइनल असाइनमेंट भी है और उसके बाद ही उनको इंटर्नशिप मिलेगी एज अ फैशन डिजाइनर। आदित्य और सुनैना अपने रूम में आए और आदित्य ने अपनी जैकेट उतारकर साइड में रखी और उसके बाद वो बेड पर टेक लगाकर बैठा। तभी सुनैना एकदम से उसके सामने आकर बैठी और बोली, आदित्य मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात पूछनी है, पहले तो मुझसे वादा करो कि तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दोगे और बिना हिचकिचाई मुझे पूरा सच बताओगे। आदित्य जो कि बेड के क्राउन से अपना सिर टिक कर आंखें बस बंद करने ही वाला था, सुनैना की ये बात सुनकर उसके आगे एकदम ही खुल गई और वो एकदम पीठ सीधी करके उसके सामने बैठ गया। क्या, कौन सा सच और कौन सी जरूरी बात, ऐसे एकदम अचानक से क्या बोल रही हो तुम सुनैना, और नीचे भी इतना अजीब सा बर्ताव कर रही थी, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम ठीक तो हो ना। आदित्य उसका हाथ पकड़कर आंखों में देखते हुए बोला तो सुनैना ने जवाब में हल्के से अपनी पलकें झपकाई और बोलना शुरू किया, क्रमशः